मधुबन में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है और हम जानते हैं कि ये सौभाग्य हम बच्चों को ही प्राप्त होता है। जैसे ही हम इस मधुबन वरदान भूमि पर और विशेषकर पांडव भवन में अपने पांव रखते हैं तो एकदम कैसा महसूस करते हैं, क्या अनुभव है सभी का? जैसे ही गेट पर एंटर किए तो एकदम ऐसे लगता है कि जैसे चार्ज्ड होना शुरू हो गए, और जैसे ही हम यहाँ से सोचते हैं कि अब हमें जाना है तो हमें कैसा लगता है कि हम फुली अपने आप को चार्ज करके जा रहे हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे जो चार्ज हो जाता है तो चार्ज होने के बाद तुम बच्चों को जाकर के दूसरों की बैटरी को चार्ज करना है। लेकिन होता क्या है, लाइफ में जब हम लोग चलते हैं तो बहुत सी बातें सामने आती है। यहाँ जब हमने भरा तो हमने ये सोचा कि सब बातें बहुत सहज हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगी, हम इनको कर लेंगे, हमने ये नियम अडॉप्ट किया है, यहाँ पर बाबा से ये प्रतिज्ञा की है और जब हम वहाँ जाएंगे तो इसको कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब वहाँ पर बातें सामने आती हैं तो हम लोग धाराशाही होना शुरू हो जाते हैं। और धाराशाही होने का जो मैंने देखा लाइफ में रीजन होता है वो क्या होता है कि हमारे जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा सोचने का तरीका है, वो थोड़ा सा पलट जाता है। यहाँ हम होते हैं तो हम ये सोचते हैं हमें उठना ही है, बाबा को याद करना है, बाबा को चार्ट देना है, सब कुछ हम ऐसा सोच करके चलते हैं कि मुझे यहाँ परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड को बना के जाना है। लेकिन जैसे ही हम वहां जाना शुरू करते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो मैंने देखा लाइफ के अंदर कि दुनिया में भी जो लोग गीता का गायन करते हैं उसके अंदर भी केवल भगवान की श्रीमत है, और शिव बाबा भी जब संगम पर आते हैं तो हम बच्चों को केवल श्रीमत देते हैं और हमको ये कहते हैं कि बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलते रहो। आज हम लोग ज्ञान सरोवर गए थे, क्लास लेनी थी वहां पर, तो दादी जानकी पार्क में गए, आप सब भी गए होंगे और जाते रहते होंगे जो यहाँ पर रहते हैं। तो वहां पर एक बहुत सुंदर स्लोगन लिखा हुआ था जो बड़ा कैची लगा, बहुत टची था। उसमें था कि बच्चे तू मुझे याद कर, आगे मैं तेरे सारे काम कर दूंगा। तो जैसे इसको पढ़ा तो बड़ा एकदम छू गया कि हमें कुछ नहीं करना है, बाबा ने सिर्फ एक प्रिंसिपल दिया है, एक श्रीमत दी है कि बच्चे तू मुझे याद कर मैं तेरे सारे काम कर दूंगा। एक्चुअली जो हम बाबा की मुरलियां सुनते हैं वो क्या है, बेसिकली श्रीमती तो है ना। जैसे बाबा साकार मुरली है, रोज हमें कहता है बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, लेकिन उसके साथ बाबा हमेशा एक अटैचमेंट देते हैं। अटैचमेंट क्या देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर तुम मुझे याद करो। क्यों याद करो, क्यों याद करो, उसका रीजन होता है, और उसका रीजन हर मुरली के अंदर रोज बाबा अलग अलग देते हैं। कभी बाबा कहेंगे कि बच्चे तुम मुझे याद करेंगे तो तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, कभी बाबा बोलेंगे कि बच्चे तुम आत्माएं बहुत पतित बन गई हो, तो पावन बनने का एक ही उपाय है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करना। अलग अलग बाबा उसके साथ अटैचमेंट देते हैं। लेकिन जनरली हम लोग करते क्या है, हम लोग कवरिंग को तो पकड़ लेते हैं। किसी से पूछें कि बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा तो हम कवरिंग को पकड़ लेते हैं। अब इसमें कवरिंग क्या है, कवरिंग है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, और छोड़ हमने क्या दिया, जो चीज मेरी बुद्धि को तरोताजा बनाएगी, नया बनाएगी, एक मेरी लाइफ में न्यूनेस लाएगी, एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट करेगी, उसको हम बच्चे छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ देने से क्या होता है, अटैचमेंट छोड़ देने से कई बार हमको लगने लगता है कि बाबा की वही वही तो मुरली है। इसीलिए कई बार देखने में आता है कि पुराने पुराने जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग मुरली क्लास में आना और अपने को स्टूडेंट समझ करके बैठना छोड़ देते हैं। उनको लगता है पता है बाबा क्या कहता है, लेकिन जब हम उसकी अटैचमेंट को पकड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई भी लेटर अगर हम किसी को भेजते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, कोई अटैचमेंट मैंने भेजी कि भाई आपको इस प्रोग्राम का इनविटेशन है, मेरे साथ आपको मधुबन चलना है, माउंट आबू चलना है, किसी वीआईपी को हमने ये लेटर भेजा, लेकिन उसमें एक छोटा सा हमने कवरिंग लगा दिया, आई एम सो एंड सो और मैं इस जगह से आपको ये चिट्ठी भेज रही हूँ, इसमें आपका लेटर है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? लेटर इम्पोर्टेंट है, लेटर इम्पोर्टेंट है ना। अगर मैंने कवरिंग नहीं भी डाला, केवल लेटर अटैचमेंट के रूप में डाल दिया, तो भी उसका रिकॉग्निशन हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनविटेशन है। तो इसी प्रकार से जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, तो मैंने ये रियलाइज किया कि बाबा की मुरली के अंदर रोज एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है और उस रियलाइजेशन को हम छोड़ देते हैं। जैसे आज की मुरली के अंदर एक बहुत अच्छी पॉइंट लगे मुझे, बाबा ने बोला कि बच्चे रात को ना विचार सागर मंथन करते हुए तुम सो जाओ और जब सुबह उठेंगे तो बुद्धि फ्रेश होगी, बुद्धि में वही ज्ञान के पॉइंट्स घूमेंगे और बुद्धि हल्की रहेगी और तुम्हारी सुस्ती भाग जाएगी। अब छोटी सी टिप है, श्रीमत है। अब कईयों को क्या होता है, सुबह उठते हैं बहुत सुस्ती आती है, मन भारी होता है, उठने का मन नहीं करता है, सुबह देखा कि टाइम क्या हुआ है तो देखते ही लगता है अभी 10 मिनट है, 15 मिनट है, थोड़ा सा और सो लो। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि बाबा ने हमें छोटी सी पॉइंट दी, लेकिन इस छोटी सी पॉइंट को मैंने प्रैक्टिकल में नहीं लाया। सुना मैंने और सुनने के बाद क्या किया, उस पॉइंट को बस ऐसे ही सुनाने तक सीमित रखा। तो इसलिए बाबा कई बार हमको कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे समझ तो गए ज्ञान को, बहुत अच्छी तरह से समझ गए, समझाने वाले भी बन गए, लेकिन बनना क्या है, बनना क्या है, समझदार बनना है। समझदार वो होता है जो उस चीज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेता है। हम जितने भी सीनियर्स की क्लासेस सुनते हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में, दादियों के बारे में, कि बाबा जो कहते थे ब्रह्मा बाबा उसको उतारते थे अपने जीवन में, मम्मा उसको जीवन में उतारती थी, बाबा हमेशा ये ध्यान रखते थे कि मेरे को पूरा विश्व देख रहा है, मैं पूरे विश्व का पिता हूँ, मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ। तो बाबा अपने को उस नजर से देखते हुए उसके ऊपर सदा अटेंशन रखते थे। तो कहीं ना कहीं हमने जो बाबा की श्रीमत मुरलियों के द्वारा मिलती है, चाहे वो साकार मुरली है चाहे वो अव्यक्त मुरली है, लेकिन अगर उस श्रीमत को अंडरलाइन करके हम उठा लेते हैं और उसको अपने जीवन में अनुभव के तौर पर अप्लाई करते हैं, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। तो मैं 2-4 ऐसे अनुभव शेयर करूंगी, क्योंकि रात्रि क्लास है, थोड़ा लाइट मूड में करते हैं और वैसे भी जहां अनुभव हमें मिलते हैं तो उससे हमें लर्निंग ज्यादा होती है। तो एक बार की बात मुझे याद आती है कि मैं कहीं जा रही थी वैसे ही किसी भाई के साथ में, तो उन भाई को अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने उनको कहा नहीं ठीक है मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, 1 किलोमीटर के करीब का रास्ता था सेंटर का, तो मैंने कहा मैं अपने आप चली जाऊंगी, सर्दियों के धूप के दिन थे तो मैंने कहा मैं वॉक करूंगी। तो मन में तो आया कि मैं करूंगी, लेकिन अब मैंने देखा जब मैंने चलना शुरू किया तो वो रास्ता थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि चलने की आदत नहीं थी तो मुझे लगा कि ये रास्ता थोड़ा लंबा है और मैं नहीं चल पाऊंगी। तो मैं ऐसे ही बाबा से बातें करते हुए चल रही थी, मैंने कहा बाबा वाह अब तो आपका टेस्ट है, अब देखती हूँ आप मेरा कैसे खुदा दोस्त बन के मेरे पास आते हो और मुझे कैसे मदद करते हो। तो ये मेरी सोच थी, सिर्फ सोच थी मेरी, और ये सोचते सोचते मैं 2 कदम आगे गई थी तो मैंने गाड़ी खड़ी देखी, और गाड़ी वो थी जिस पर हमने सुबह स्टिकर लगाया था, बड़ी गाड़ी भी थी। तो उसको देखकर मैंने कहा ये गाड़ी यहाँ कैसे खड़ी है, इसको तो हमने सुबह स्टिकर लगाया था और ये तो उनकी गाड़ी है, तो ये भाई यहाँ पर कैसे। अब ये मैं इतना ही सोच रही थी, इतना सोचते सोचते वो भाई वहां से बाहर निकले। अब बाहर निकल के कहते दीदी आप यहाँ कैसे, तो मैंने कहा आप यहाँ कैसे, कहते मेरी तो फैक्ट्री ये है, मुझे ये पता था कि इस एरिया में इनकी फैक्ट्री है लेकिन यहाँ पर है मुझे ये नहीं मालूम था। तो फिर मुझे वो अंदर में लेके गए और अंदर ले जाकर के उन्होंने पूरी अपनी, कहते आओ दीदी फैक्ट्री देखो, तो मैंने उनकी फैक्ट्री देखी और देखने के बाद कहते चलो अब मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो अंदर में मुझे इतना आया कि मैंने कहा बाबा तू एक सेकंड सोचने भी नहीं देता है, एक सेकंड तुम सोचने भी नहीं देते हो और हमारी जो इच्छा होती है, जो संकल्प होता है वो एक सेकंड में पूरा कर देते हो। कल की मैं एक बात सुनाती हूँ। यहाँ डिनर कर रहे थे हम छोटे रूम में, तो वहाँ क्या हुआ कि खिचड़ी होती है शाम को, तो खिचड़ी खा रहे थे, तो खिचड़ी खाते खाते मन में संकल्प आया ऐसे अंदर में कि मैंने कहा खिचड़ी के साथ पापड़ हो ना तो बहुत मजा आता है, ये सोचा ही था। पर फिर मन में सेकंड थॉट आया कि पता नहीं कहूं कि नहीं कहूं, बाय चांस यहाँ ना हो पापड़ तो उन भाई को ही लगेगा कि मैं बहनों की इच्छा नहीं पूरी कर पा रहा। तो मैंने मन में ही इस थॉट को अभी सोचा ही था कि कहूं कि नहीं कहूं, इतने में ही वो भाई पीछे से आता जो यहाँ बैठे थे, कहते दीदी पापड़ लेना है आपको। तो मुझे ये लगा कि अगर सच दिल से हमारी कोई इच्छा होती है तो बाबा ने ये जो बात कही कि बच्चे तू बस मुझे याद कर और मेरे को तू अपना संकल्प दे, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ। एक बार मैंने देखा कि एक बार मैं विदेश में थी और हम लोग जर्मनी से स्विट्जरलैंड चले गए थे। अब जब मैं गई थी, वो बात बहुत पुरानी है, 91 के आसपास की है, तो उस समय क्या हुआ कि जब हम वहां से जर्मनी से स्विट्जरलैंड चले गए तो वहां जाने के बाद हम फिर से वापिस आ रहे थे, तो जो एक फ्रेंड थी पेट्रा, जो बी के फ्रेंड थी जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी, वहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव होता था उस टाइम, तो उसने मेरे से पूछा कि उर्मिलबेन आपके पास डबल एंट्री वीसा है? तो मैंने कहा वो क्या होता है? कहती अब हम दोबारा एंटर कर रहे हैं जर्मनी में, एक तो जर्मनी से यहाँ आए और अब हम दोबारा एंटर कर रहे हैं, तो आपके पास डबल एंट्री वीसा होना चाहिए। तो मैंने कहा भी प्लीज यू सी दी पासपोर्ट, तो उसने मेरा पासपोर्ट देखा तो उसने कहा ये तो नहीं है। तो कहती अब वो फ्राइडे का दिन था, कहती अब ये बैरियर पे क्या करेगा, स्विट्जरलैंड आपको पता है कैसा देश है, तो कहती अब ये क्या करेगा, दो दिन हमें बैरियर पे रोक लेगा और हमें जो है वीसा लगवाना पड़ेगा, फिर आप समझते हैं वहां की करेंसी कितनी महंगी होती है, और फिर हमारा वीसा लगेगा और फिर हम इस देश में एंटर कर पाएंगे। फिर मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा आप कहाँ हो, इग्नोरेंस इज ब्लिस, मुझे तो पता नहीं था कि डबल होना चाहिए, मैं लगवा लाती एक स्टैंप और मुझे क्या फर्क पड़ता था, अब आप कहाँ हो, अब आप उतर के आओ और आप मेरी मदद करो। तो क्या था कि वो पुलिस वाला इधर खड़ा हुआ था और इधर जो थी वो सिस्टर ड्राइव कर रही थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, मैं इस तरफ बैठी थी, तो उसने हमें देखा, वहां पर एक हैबिट होती है लोग देख के एक दूसरे को हेलो और स्माइल तो कर ही देते हैं, तो उसने देखा मेरी तरफ, तो मैंने अपने को पीछे कर दिया और बाबा को आगे करके मैंने उसको बड़े फोर्स से बोला हेलो, तो उसने बोला हेलो। अब उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरा पासपोर्ट नहीं मांगा और किसका मांग लिया, जर्मनी वाली सिस्टर का मांग लिया, और वो पासपोर्ट देख के उसने क्या किया, अलाउ कर दिया कि गो एट, जो कि एक स्वप्न था, कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाबा को यूज नहीं करते, बाबा ने हमेशा कहा है कि हर स्टेप पर मुझको यूज करो। इसी तरह से मैं एक बार साउथ अफ्रीका ट्रेवल कर रही थी, वहां क्या हुआ कि जब मैं निकलने लगी तो चांस की बात है किसी सेंटर पर मेड आई होगी और मैं थोड़ा बैग छोड़ के चली गई तो उसने वहां से पर्स निकाल लिया। अब मुझे पता तो लग गया था कि भाई मेरा पर्स निकल गया है, लेकिन अब मेरे मन में आया कि नहीं, मैं ना सेंटर सिस्टर्स को नहीं बताती हूँ, उनको लगेगा कि इंडिया से एक सिस्टर हमारी सर्विस करने के लिए आई और यहां से इसका पर्स निकल गया, तो उनको कैसा भी लग सकता है। और फिर मैंने कहा बाबा मांगने से मरना भला, मैं बिना पैसे ट्रेवल करूंगी लेकिन मैं मांगूंगी नहीं, तो मैंने सोचा कि इस प्रिंसिपल को ना मैं अप्लाई करती हूँ। तो क्या हुआ कि उस समय सिर्फ मेरे पास पासपोर्ट था, कैन यू बिलीव, वहां से मेरे को जाना था मपूटो, मपूटो से कैलकटा, कैलकटा से दिल्ली, कितना लंबा रूट है। तो वहां से जब मैं निकली तो मैंने देखा बाबा नहीं है, बाबा के कमरे में मैंने बोला, मैंने कहा बाबा सिर्फ मैं आपके भरोसे पर ट्रेवल कर रही हूँ और आपको आगे रहना, और बड़ी कॉन्फिडेंट कि बाबा मुझे ले जाएगा। अब क्या हुआ, एयरपोर्ट पे आए तो उसने कहा कि नहीं आपका एयरपोर्ट टैक्स नहीं पे हुआ है। मैंने कहा नो, द सिस्टर जो थी उसने मेरा पे किया, उसने मुझे बोला है, क्योंकि मैं उनकी गेस्ट थी और उसने मुझे बोला है कि मैंने पे कर दिया है। तो अब मुझे लगा कि मुझे कहेगा फोन कॉल करो, फोन कॉल के लिए भी पैसे चाहिए, पर उसने इंटरनल कॉल किया उस सिस्टर को, और उसको पूछा कि इनका एयरपोर्ट टैक्स, तो उसने उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि एयरपोर्ट टैक्स पे हो गया। तो क्या हुआ, मपूटो में मेरे लिए फ्लाइट रुकी, डिले हो गई इस वजह से। अब वहां की फ्लाइट में तो मैं चढ़ गई, यहां से तो क्लियरेंस हो गई। मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा थैंक यू। अब जब वहां से मपूटो पहुंची तो एयरपोर्ट पे फिर वो कहते हैं कि भाई यू हैव टू पे एयरपोर्ट टैक्स या जो भी उसने मांगा ये आपको देना पड़ेगा। अब दो लोग मेरे को लेने के लिए आए हुए थे, तो उस समय उन्होंने नो नो सिस्टर आप नहीं देंगे, आप तो हमारे गेस्ट हैं। तो मैंने कहा बाबा थैंक यू। वहां से भी निकल गए। अब निकल गए तो फिर अब सेंटर पे चले गए। अब फिर थोड़ा सा तो संकल्प आता ना कि बाबा अभी भी इतना लंबा डिस्टेंस है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ पासपोर्ट और टिकट के बेस पे आप लोग कहते हैं विदेश के लिए बहुत पैसा चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और मैं बिल्कुल बिना पैसे और इतने कॉन्फिडेंस से ट्रेवल कर रही हूँ। तो उस समय फिर क्या हुआ कि वहां से जब मैं मपूटो से निकली तो मुझे लगा कलकत्ता जाऊंगी, कहीं इंडिया में ही कोई मुझे रोक ले तो क्या होगा। तो उसमें क्या हुआ कि फिर वो सिस्टर ना मुझे कहने लगी, मैं राखी पर गई थी राखी बांधने के लिए। तो क्या हुआ कि उस समय उस सिस्टर ने मुझे कहा यहाँ ना एक गुजराती सिस्टर रहती है, उसके यहाँ पे चलते हैं, उसको तबीयत ठीक नहीं है उसकी, उसको आप राखी बांधेंगे और उसको ये पता लगेगा ना कि आप इंडिया से आई हैं तो बहुत खुश होगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। तो अब वहां उसको राखी बांधने के लिए गए, बड़े प्यार से राखी बांधी। फिर इंडियंस क्या करते हैं, कभी भी बिना पैसे के नहीं कराते हैं, तो उसने कुछ अमाउंट मुझे याद नहीं है वो निकाल करके दिया। तो मैंने उस सिस्टर को हैंडओवर कर दिया, मैंने कहा ये प्लीज आप रखिए सेंटर के लिए। मेरे मन में एक भी थॉट नहीं आया कि मैं इसको रख लूं अपने पास में। तो देखो बाबा मदद करता है। फिर बाबा ने उसको कहा कि नहीं प्लीज सिस्टर ये आप लेकर के जाइए, हमें अच्छा लगेगा। तो उसने दो तीन बार मुझे कहा तो मैंने उसको शायद रख लिया। लेकिन मैं निकली वहां से कलकत्ता, कलकत्ता भी पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं आई। और कलकत्ता में सिस्टर्स ने मुझे कहा कि चलो आपको थोड़ा सा ना घुमा के लेके आते हैं, वहां पे प्लेनेटोरियम वगैरह है ना कुछ इस तरह की चीजें, तो आप साइंस स्टूडेंट रही हो तो आपको ये सब दिखा के आते हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती हूँ, कहीं टिकट पे करनी पड़ गई तो क्या होगा। अब वहां भी निकल गए, निकलने के बाद इंडिया की फ्लाइट में माना दिल्ली की फ्लाइट में चढ़ गए और घर पे पहुंच गए। कैसे, हम कहते ना बाबा का काम बिना पैसे के नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, बिना काम के भी बाबा जो है ना पैसे को जनरेट करा लेता। कैसे जनरेट कराता है, हम लोगों ने जब आश्रम बनाया था तो आश्रम बनाने के बाद जितना हम लोगों ने कमाई की थी ना सारी हमने सेंटर को बनाने में खर्च कर दी थी। और एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि हमारे पास पैसा इतना भी नहीं था कि हम थोड़ा बहुत कुछ काम भी करा सके, पर मन में ये था कि एक बहुत बड़ा फंक्शन करना है तो उसमें 1000 के करीब हम लोगों ने VIPs को बुलाया था। अब ये प्लानिंग तो थी, दिल तो बड़ा कर लिया, लेकिन अब काम बिना पैसे के तो नहीं होते ना। पर फिर भी मन में था बाबा चाहे कुछ भी हो, जब स्थान बना है तो अब फंक्शन भी बड़ा ही करना है। तो क्या हुआ कि मन में एक थॉट आया, वहां पर BSF होता था, तो BSF ऑफिस में हम लोग गए, वहां पर जो कमांडेंट होते थे वो क्रिश्चियन थे, जाके उनसे बात की, हमने कहा इस तरह से हम लोगों का नया सेंटर बना है और हम चाहते हैं कि उसके उद्घाटन पे आप आए। तो उसने कहा श्योर सिस्टर, बहुत अच्छी नेचर के थे बाई चांस, तो कहते आपको सिस्टर्स कुछ चाहिए तो आप हमें बताएं। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ चीनी और राशन जो होता है ना सस्ते रेट पे मिल जाता है, तो हमने कहा ठीक है हमें थोड़ा सा ये चाहिए। तो कहते आपको जो भी चाहिए वो आप बता दीजिए। अब जब हम अंदर घुसे थे ना तो हमने देखा कि वहां पर बैंड बज रहा है और वहां पर लोग जो है सफाई कर रहे हैं, बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, शमियाना रखा है, बहुत कुछ रखा है। तो मेरी एक हैबिट है मैं चीज को कैच बहुत जल्दी कर लेती हूँ, तो मैंने उसको सेंस किया और जैसे ही उसने बोला कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप बता दीजिए, उसने कहा आप लिस्ट दे दीजिए। तो फिर क्या था कि A to Z हमने सामान की लिस्ट बना दी और उसके अंदर ये भी लिख दिया कि हमें यहाँ का बैंड चाहिए, लेकिन वो बैंड सॉन्ग जो प्ले करेगा वो हमारे करेगा। तो ये एग्रीड फॉर एवरीथिंग, उसने साइन कर दिया कि ओके इनको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाए। और जबकि ये नियम था कि कभी भी गवर्नमेंट का बैंड जो था किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाता था, ये 97 की बात है, और उस समय इंस्टीट्यूशन में भी ये आर्मी का बैंड कहीं आया नहीं था और उस समय वो फर्स्ट टाइम बैंड जो था वो पालम विहार सेंटर में बजा था। और उस समय इतने लोग आए थे, लौकिक रिलेशंस भी आए थे, तो वो इतना दे गए कि उसका खर्चा भी निकल गया और बचत भी हो गई, सेंटर भी भरपूर हो गया। तो कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास धन नहीं है। देखो विदेशी भाई बहन आते हैं, उनके पास कोई धन के भंडारे हैं? हम उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर पूछ करके देखें तो वो बेचारे यहाँ आते हैं और आने के बाद जैसे ही वो लौट कर वापिस जाते हैं तो वो फिर से जमा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि हमें बाबा के घर में जाना है। और जब हम सोचते हैं कि हमें जमा करना है तो जमा हो भी जाता है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि कोई भी बात होती है तो हम किसको बताएं? बाबा को बताएं। जैसे ही हम बाबा को बताते हैं तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। एक बार सेंटर पर करुणा भाई जी आए हुए थे, सब जानते होंगे ना, बड़े भाई हैं सीनियर, तो वो आए हुए थे। और एक बार उन्होंने कहा कि आजकल मधुबन में ना बात चलती है कि दिल्ली में कोई बड़ा स्थान होना चाहिए क्योंकि बहुत वीआईपीज ऐसे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं मधुबन में, तो दिल्ली में कोई ऐसा बड़ा स्थान होना चाहिए। तो उन्होंने ये बात बोली सिर्फ और मेरे को ये बात जम गई। तो कहते हैं कि अगर कोई करना चाहे इस प्रोजेक्ट को तो कर सकता है। तो मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा और ये बोला उन्होंने कि निर्वैर भाई जी से संपर्क कर लेना। तो पर मैंने अंदर में थॉट ले लिया कि बाबा इस प्रोजेक्ट को मैं करूंगी। तो मैंने क्या किया, मैं बाबा के कमरे में गई और मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये प्रोजेक्ट करना है, ना तो आप पीछे हटोगे और ना मैं पीछे हटूंगी, पर ये प्रोजेक्ट होना ही है। कैसे भी करके दिन रात आप कहोगे मैं काली करूंगी, मेहनत करूंगी। उन दिनों मैं ऑफिस में भी सर्विस करती थी और सेंटर भी नया नया बनाया था, तो नया एस्टेब्लिशमेंट होता है तो आपको पता, और काफी एक वीआईपी एरिया में था तो उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या हुआ कि जब मन में ठान लिया कि इसको करना है, उस समय स्टूडेंट्स भी इतने नहीं आते थे, तो एक बुजुर्ग माता, उसका बेटा जो कि ज्ञान में नहीं आता था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा प्लीज मुझे लैंड प्रोजेक्ट करना है, आप मुझे ले चला करोगे जमीन दिखाने के लिए? तो उसने कहा हाँ मैं जमीन दिखाने के लिए आपको ले चला करूंगा। तो करते करते हमने 100 जमीनें देखी और पूरे उसमें हरियाणा में गाड़ी का नंबर DAC 970 सिस्टर उर्मिल की गाड़ी है और ये ब्रह्मा कुमारी इसके लिए एक बड़ा लैंड प्रोजेक्ट देख रही है। इनका बजट 2 करोड़ है। उन दिनों बहुत रिसेशन था इसमें प्रॉपर्टीज में। तो क्या हुआ कि पूरा करते करते घूमते घूमते 100 जमीनें देख डाली, 1 साल हो गया। मेरे पास बड़ी प्रकाशमणि दादी जी के डायरेक्ट फोन आते थे और जब मैंने इस प्रोजेक्ट को करना शुरू किया तो दिल्ली के बड़े भाई बहन हिल गए, कहते कि ये बहन कर रही है छोटी सी, उस समय मैं छोटी ही थी, मानो आज से 20-25 साल छोटी हो गई, तो ये कर रही है और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने भी काफी जमीनें देखनी शुरू कर दी। अल्टीमेटली फिर ये हुआ तो दादी ने मेरे को फोन किया, तो उस समय दादी ने पूछा कि उर्मिल आपका क्या विचार है, कौन सी जमीन लेनी चाहिए। पूरा का पूरा कारवां निकलता था, जगदीश भाई, निर्वैर भाई, रमेश भाई, पूरे का पूरा कारवां लेके हम लोग निकलते थे। जिस जमीन पे पांव रखते थे वही जमीन के रेट बढ़ा देता था, क्योंकि इनको पता था कि अभी इतना लोग आ रहे हैं तो ये परचेज करेंगे इसको, तो वो रेट चढ़ा देते और रेट चढ़ा के फिर मेरे को फोन करते थे, कहते कि सिस्टर उर्मिल वो जमीन आपको लेनी है, ये हमारे पास है, और दूसरा उसको परचेज कर लेता था, ये शो करते थे। तो फिर कहते ये जमीन हमारे पास है, आप इस जमीन को हमसे ले सकते हो। मैंने कहा नहीं, आपकी जमीन आपको ही मुबारक, हमें ये जमीन नहीं चाहिए। तो एक बार प्रकाशमणि दादी जी और मोहिनी बहन, ये लोग मद्रास में थे और सर्दियों के ही दिन थे, जनवरी मास के, तो मेरे पास अचानक इनका फोन आता है रात के 9-10 बजे कि हम लोग ना सुबह की फ्लाइट से पहुंच रहे हैं और आपने जो जमीन बताई है ना, तो इस जमीन को हम देखना चाहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो जमीन होती है ना उसमें 1 लाख को 1 रुपए लिख दिया जाता है, इक्वल टू 1 रुपी करके, इस तरह से कैलकुलेट करके उसको दिखा देते हैं। तो दादियां तो फिर भोली तो है, तो उन्होंने देखा कि तो एक रुपए का जमीन ये तो बहुत सस्ती है। तो वो देख करके फिर मैं तो बड़ी हैरान, मैंने कहा अब करें क्या, दादियां तो आ रही हैं जमीन देखने के लिए और पूरा सारा उनका ऑर्गेनाइज करना, प्रकाशमणि दादी जी को जमीन दिखाना। और भी जो जमीन दिखाने वाले थे ना, वो भाई भी उन दिनों अहमदाबाद में थे, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं और अब बताओ क्या करना है। तो अब वो तो नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने उनके जो पार्टनर थे ना उसको कह दिया कि तुम ये जमीन इनको दिखा दो। नजफगढ़ में थी वो जमीन। तो देखने के लिए अब मैं पांडव भवन पहुंची, दादी जी वहीं आए हुए थे। सुबह सुबह सर्दी में 6 बजे का टाइम था और अर्ली मॉर्निंग देखनी थी जमीन। अब वहां पे निकले तो उसका जो मन था ना पार्टनर का, बेईमान हो गया और उसने जमीन तो दिखा दी। उसके बाद उसने मेरे को फोन किया कि ऐसे ऐसे मैं बोल रहा हूं, आप जिससे जमीन के लिए डील कर रहे हैं ना, आप उसके साथ जमीन के लिए डील मत करना, वो बड़ा चोर है, वो तुम्हें ना बेवकूफ बना देगा। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं, मैंने कहा आप तो शरीफ है ना, आप कौन है? तो उसको मैंने फिर बोला जो उसका नाम था, मैंने कहा आप यही बोल रहे हैं ना, मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हो बोलिए। तो मैं कहता है नहीं नहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि इसने ना कोई गुरु का नाम लिया, उसको भी बुद्धू बना दिया था, जो जेल में चले गए थे ना, क्या था बड़ा फेमस था, आशाराम, हाँ उसको भी बुद्धू बना दिया था इसने, और अब ये तुम्हें ना बुद्धू बना दे, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पास जो जमीन है ना वो तुम मेरे से लो। तो फिर मैंने उसको इतना मतलब बोला, उसको इतना बोला, मैंने कहा आप समझते क्या हो, मैंने कहा आप समझते हो मैं छोटी बहन हूँ, तो इसका मतलब आप मुझे जैसे मर्जी बेवकूफ बना लोगे। मैंने कहा आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैंने कहा आप मुझे पता है आप जो है ना चाल खेल रहे हैं हमारे साथ में। तो बेचारे बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसके बाद मैंने कहा ठीक है वो तो बेवकूफ है, वो महंगी जमीन देगा तो तुम मुझे सस्ती दे दोगे क्या? मैंने कहा चलो हम आपसे डील कर लेंगे। तो वो फिर देखता रह गया। तो करते करते मेरा ये तो मैंने एक इंस्टांस सुनाया, लेकिन ऐसे हजारों इंस्टांस हुए जमीन लेने के टाइम में कि इतना फंसाने की लोगों ने कोशिश की बीच में कि बहुत करप्ट केसेस आते थे, क्योंकि जमींदार लोग होते हैं, शराब पिए हुए भी लोग होते हैं, ये सब भी लोग होते हैं, तो बहुत अजीब अजीब बातें करते थे। एक बार एक केस ऐसा आ गया, उसने बोला कि तुम जो है ना, हम तो शिव को मानते हैं, तुम भी शिव को मानते हो। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा तो फिर शिव के लिए क्या करोगे शिवरात्रि पे? रजोकरी के थे वो लोग। तो मैंने कहा तुम क्या करोगे फिर शिवरात्रि पे, शिव शिव तुम्हारा भी तो बाप है ना, तो बाप को क्या बच्चे कुछ करके नहीं दे सकते? मैंने कहा तुम 5 एकड़ जमीन दो, 50 एकड़ जमीन संस्था नहीं लेगी तो मैं आपको पैसे दूंगी। पर मुझे पता था इन्होंने ना 5 एकड़ देनी है ना 50 एकड़ लेनी है। तो माना कहने का भाव ये है कि बाबा अपने बच्चों के अंदर इतनी शक्ति भर देता है, अगर हम किसी काम में हिम्मत रखते हैं। तो इससे इतना ज्यादा फायदा हुआ कि मैं सीनियर्स के इतना क्लोज हो गई और दादियों ने, निर्वैर भाई ने, जगदीश भाई तो खैर बहुत ही प्यार करते थे, तो इतना उन्होंने वो किया कि देखो किस तरह से इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाबा कहते ना बच्चे हिम्मत मत हारो, आप प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, सेंटर भी चला रहे हो, छोटी बात तो नहीं है, छोटी बात नहीं है, नए एरिया में नया एस्टेब्लिशमेंट था। लेकिन करते करते अल्टीमेटली अंदर में ये ठान लिया था कि ये करके रहना है। तो वो हुआ कि नहीं हुआ, आज वो स्थान है जो ORC जहां हम सब जाते हैं, कितना सुंदर रिट्रीट सेंटर है। तो मतलब कहने का ये है कि बाबा ने बोला इसी तरह से हम अपनी आदतों के पीछे लगे रहें, हमारी आदतें भी हमें परेशान करती है ना, तो हम लोग भी क्या होते हैं कि स्थूल चीजों के पीछे तो हम लगे रहते हैं। जैसे मानो मैंने लैंड प्रोजेक्ट के पीछे लगी रही और साल भर तक लगी रही, उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक हो नहीं गया। इसी तरह से अगर हम अपने संस्कारों को पकड़ लेते हैं और अंदर में ये ठान लेते हैं कि हमें जो है इस संस्कार को बदलकर रहना ही है, बदलकर रहना ही है, तो वो फिर संस्कार हमारा हमसे सल्यूट करता है, सलाम करता है। सच्ची बात है, लगे रहो, जो बाबा ने हमें प्रिंसिपल्स देना उसको जीवन में अप्लाई करो। यहाँ बैठे हैं हम, सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद क्या करें, कैसे करें, सर्विस में कैसे निकलें, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने कहा तुम कौन सी रिकॉर्डिंग कर रहे हो फिर अपने, कौन से गीत हम भर रहे हैं? वही पुरानी फाइल्स हम लोग फिर खोले चले जा रहे हैं। तो जब ये पुरानी, यहाँ आके हमने बहुत चार्जिंग की, फिर वहां गए हम एकदम डिस्चार्ज बैटरी हो गई। तो यहाँ आने का भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ जाता है कि यहाँ आए, हमने पैसा इन्वेस्ट किया, किसी का चांस भी हमने रोका होगा, कोई और अच्छा आना चाहता होगा कोई, और हम यहाँ पर आए, हमने उसका चांस भी रोका। तो कई बार हमारे ऊपर सूक्ष्म कई चीजों के पाप बन जाते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है कि बाबा कहते कि बच्चे संगम पर सिर्फ कुछ नहीं करना, तुम्हें मुझे याद करना है। याद करना माना क्या? मेरी श्रीमत पर चलना, कदम पे कदम रखना। जो बाबा ने कहा, जी बाबा, जी बाबा। बड़ी दीदी दादियां क्या करती आई बाबा के सामने? जी बाबा। मम्मा ने क्या किया? जी बाबा। जी बाबा किया ना, तो बाबा ने क्या बना दिया उसको? राधे बना दिए। तो बाबा क्या हमें नहीं बना सकता? क्यों? क्योंकि हम लोग जो है 90% नो बाबा और 10% जी बाबा, वो भी सोच सोच के हाफ हार्टेड होके करते हैं जी बाबा। तो क्या होता है कि हमारा जो अकाउंट है वो बहुत डेबिट होना शुरू हो जाता है। तो कई बार हम बाबा के बनने के बाद, बाबा को अपना बनाने के बाद भी जितना अकाउंट हम अपना क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि हम सागर के कंठे पर हैं, मधुबन निवासी तो विशेष रूप से सागर के कंठे पर बैठे हैं, और यहाँ बैठकर के भी अगर हम अपना भाग्य ना बनाएं, छोटी छोटी कई बार कंपैरिजन में आ जाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा परीक्षाएं आती हैं, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन किसको कितना आगे रखा जा रहा है, एक सेकंड के अंदर क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। अब यदि वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है तो क्या होता है? बस फिर उन थॉट्स को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। आए भगवान के घर में, लेकिन भगवान के घर में भी आके अगर मानो हमने कोई ना कोई विकर्म कर लिया, पैसे की चोरी कर ली, सामान की चोरी कर ली, तो क्या होता है, क्या होता है? एक हमारी अभी क्लासेस चल रही टीचर्स की, उसमें एक बड़ी अच्छी बात निकली थी कि दादी हमेशा कहती थी कि साक्षी होकर के सीन को देखो, राय जरूर दो सबको, सलाह जरूर दो कि देखो ये चीज ठीक नहीं है, ध्यान दो इसके ऊपर, लेकिन अगर कोई नहीं मानता है, नहीं करता है, तो तुम साक्षी होकर के देखो उसको। परिवारों में भी ये बातें आती है, कई बार हम पीछे ही लगे रहते हैं कि जैसे हम ही है सुधारने वाले। अगर दादियों की मैं कई बार सोचती हूँ कि दादियां अगर हमारी इस तरह से सोच के इंस्टीट्यूशन में चल रही होती, इतनी फ्रीडम ना होती, तो क्या होता, आज ये संस्था नहीं बन सकती थी, एकजुट होके हम नहीं चल सकते थे। दादियों ने इतनी लिबर्टी दी, बाबा ने इतनी लिबर्टी दी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस फ्रीडम का हम नाजायज फायदा उठाएं। अगर हम इतना खा रहे हैं भगवान के घर से, तो हमें इतना उसका एवजा जरूर देना चाहिए। कई तरीके होते हैं, बाबा के घर में आके हम सेवा करके दे सकते हैं, स्थूल सेवा करके दे सकते हैं, धन से हम सहयोगी बन सकते हैं, हम किसी के जीवन को और ऊंचा उठा सकते हैं। मैं तो इवन इतना ध्यान रखती हूँ कि जिस कमरे में मैं रहती हूँ कोई चीज खराब है, कोई परेशानी है, तो मैं बोल के जाती हूँ कि इसको ठीक कर दो, आते ही कमरे को पहले सेट करूंगी, ठीक करूंगी। मुझे लगता है कि वो कमरा जो तुम्हें इतना सुख दे रहा है, हमारा भी तो फर्ज है ना उसको सुख देना, फर्ज है कि नहीं है? जब हम चाहते हैं कि हमें दी बेस्ट मिले, तुम्हें देना भी तो, छोड़ के भी तो कैसे जाना चाहिए, दी बेस्ट छोड़ के जाना चाहिए ना। एक बार हम लोग अफ्रीका टूर पे थे, तो हमारे यहाँ से ग्रुप गया था, तो वहां पे जब जिस होटल में हम लोग ठहरे ना, मानो वेदांती बहन भी साथ थे हमारे, लेकिन कहीं दूर गए थे तो होटल में रहना पड़ा था एक नाइट के लिए। तो वहां पे क्या हुआ, सबने कहा हमें ऐसा रूम चाहिए, हमें ऐसा रूम चाहिए, हमें, ठीक है ले लो, दे दिया सबको रूम। और जब निकले वहां से, तो चादर कहीं जा रही है, तकिया कहीं जा रहा है, और टिश्यू पेपर कहीं पड़ा है रूम में। मेरी हैबिट है मैं चेक करके निकलती हूँ। मैं गई वहां पे और मैंने देखा, मैंने कहा किसका कमरा है, पता लगा इसका कमरा है, उतारा जीप से, मैंने कहा जाओ पहले कमरा ठीक करके आओ। मैंने कहा तुम चाहते हो कि मैं नंबर वन चीज मिले, तो बाबा का घर हमारा घर है, उसको ठीक करके जाना। लाइट जल रही है, कई बार मैं देखती हूँ कॉरिडोर्स में अननेसेसरी लाइट जल रही होती है। भाई ठीक है, जिसको बंद करने की ड्यूटी उसकी ड्यूटी तो है, लेकिन मैं अपना भाग्य कैसे बना सकती हूँ? कैसे बना सकते हम भाग्य? क्या हम उस लाइट को जलते देख के हम ऑफ नहीं कर सकते? कई बार नल फालतू बह रहे होते हैं, थोड़ा खोलना चाहिए, हम ज्यादा खोल देते हैं। पूछ के तो उनके दिलों से देखो कि यहाँ पर पानी आता कैसे है, कैसे आता है। तो ये छोटी छोटी बातों में सहयोग देना, ये एक बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है। और छोटा सा सहयोग क्या पता हमारा किस समय कौन सा भाग्य बना दे। और बाबा मेरे हर कर्म को देख रहा है, बाबा देख रहा है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बाबा के पास वो मेरा डिपॉजिट जा रहा है। जैसे नेगेटिव का भी बाबा देख रहा है और वो आत्मा भी देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो क्या होता है, वो अपने आप ही छोड़ के यज्ञ को चले जाते हैं। यज्ञ नहीं उनको कहता, लेकिन वो अपने आप ही छोड़ के चले जाते हैं, उनका डिपार्टमेंट बदल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उनमें एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन आती है कि देखो हाँ, ये भी एक सजा है। सजा का रूप तो है ना, जैसे बाबा बच्चों को सजा देते थे तो क्या करते थे, बाबा कभी उनकी पढ़ाई नहीं बंद करते थे, क्या करते थे, कोने में बिठा देते थे और मुंह कहाँ कर देते थे, कोने की तरफ कि तुम सुनो भी सही लेकिन ये तुम्हें सजा है कि सबका फेस इस तरफ है और तुम्हारा फेस किस तरफ है, दूसरी तरफ है। तो इससे क्या होता था कि एक लर्निंग है हमारी लाइफ के लिए। हर सेकंड बाबा कहते हैं कि तुम संकल्प पे अटेंशन रखो कि मेरा जो संकल्प है वो कितना उमंग उत्साह वाला है। ये कभी भी हमारा ब्राह्मण जीवन में सोडा वाटर नहीं होना चाहिए। देखो ब्रह्मा बाबा भी 90 साल की उम्र में खगिया मारते थे, मैं मिचनू बनूंगा जाके, बच्चों के साथ ऐसे खेला करते थे, उनके कमरे में छिपकली को फेंक देना और फिर छुप जाना और फिर देखते थे कि बच्चे तुम छिपकली से सामना नहीं करते तो क्या तुम विश्व के राजा बनोगे। ऐसे बाबा बच्चों के साथ खेला करते थे। तो क्या भगवान के चरित्र थे? तो ये चरित्र हमारे भी तो हो सकते हैं ना, कि हम भी अपने अंदर इतना उमंग उत्साह भर के चलें, इतना उमंग उत्साह भर के चलें कि कोई हमारे उमंग उत्साह के आगे ठहर ना सके। पर अक्सर देखने में क्या आता है, कई बार हम ब्राह्मण जब आपस में मिलते हैं तो हम एक दूसरे के स्वभाव संस्कार से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। फ्रेंडशिप में फिर क्या होता है, धीरे धीरे फ्रेंडशिप होते होते हम और तरह की परचिंतन परदर्शन की बातों में चले जाते हैं। अरे ये इतना पुराना है, ये इतनी पुरानी है, ये भी ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे चलते हैं। तो बाबा ने कब कहा कि तुम किसी को अपना फ्रेंड बनाओ? हेलो जरूर करो, मिलो जरूर सेंटर पे, लेकिन एक दूसरे के घर में जाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ चाय पीना, उनके साथ अपने बिजनेस की लेन देन करना, कोई हम रिलेशनशिप बनाने थोड़ी आए हैं। अपने लौकिक के साथ तो हमने तोड़ दिया, तो बाबा कहते लोहे की जंजीरों से अब तुम सोने की जंजीरों में क्यों फंसते हो, क्यों फंसते हैं? ये ब्राह्मणों के अंदर जब आने शुरू हो जाता है संस्कार, वहां उनकी अवनति शुरू हो जाती है। नहीं तो देखो हरेक का ये अनुभव होता है कि जब हम ज्ञान में नए चलते हैं तो एक दो साल हम किसी को नहीं देखते और ऐसे दौड़ते हैं डेली क्लास में जैसे कि क्लास बस मेरे लिए ही है, होता है कि नहीं होता? और उसके बाद क्या हो जाता है, टाइम नहीं मिलता, आ नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्या हुआ भी, क्लास भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, टाइम भी वही है, टीचर भी वही है, लेकिन अपने मन में पावर की कमी हो गई, उमंग उत्साह की कमी हो गई। तो उमंग उत्साह हमारे जीवन का ऑक्सीजन है, इसको हमें अपनी लाइफ में कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। इस चीज को जीवन में बनाए रखो तो देखो बातें आएंगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन एक उसका रियलाइजेशन होना चाहिए। कई बार हम लोग अपनी कमियों को कमी नहीं समझते, दूसरे की कमी को जल्दी पॉइंट आउट कर देंगे कि तुम्हारे अंदर में ये कमी है, लेकिन मेरे में अगर इतनी सी भी कमी है तो मेरे में कमी तो है ना। अगर मेरी नजर अपनी तरफ है तो फिर मेरे हमेशा प्रोग्रेस होती है। और यदि हमें दूसरे की कमी ज्यादा दिखाई देती है कि वो पुराना भी ऐसे करती है, वो बहन भी ऐसे करती है, भाई बाबा ने कोई विशेषता देखी होगी जो बहन को इस सीट पे बिठाया है, बिठाया है कोई विशेषता तो देखी होगी, उसके जो ब्रह्मचर्य पालन की शक्ति है जिसके 50% मार्क्स बाबा बताते हैं, उसको हम परिवार में रहने वाले कभी भी मैच नहीं कर सकते। बाबा ने अगर उसको चुना है, उसको वो सीट दी है, तो इसका मतलब वो कई गुना हमसे आगे है। तो वो तो नहीं देखेंगे, लेकिन कोई छोटी सी बात उसके अंदर है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। भाई बाबा की मुरली में कितनी बातें थी, वो हमने क्यों नहीं पकड़ी, वो क्यों नहीं पकड़ी। भाई ठीक है, वो उसके अंदर बात है, तो चलो मैं सेंटर को और तरीके से बढ़ाने में सहयोग हम देते हैं। तो जब हम ये ठान लेते हैं कि मुझे सहयोगी बनना है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, और बाबा के नाम को बाला करने के निमित्त भी बन जाते हैं। ठीक है, तो कईयों ने जैसे परिचय पूछा, मैं लौकिक नाम उर्मिल है, दिल्ली से हूँ, पालम विहार से। और जब यज्ञ में हम लोग शुरू में आए थे, तो यहाँ पर उस समय हमारा जो लौकिक परिवार था वो एक VIP फैमिली माना जाता था। तो जिसमें जो डॉक्टर MD गुप्ता, डॉक्टर मंजू गुप्ता और डॉक्टर मोहित को शायद आप लोग बहुत जानते हो, TV पे जिनके बहुत प्रोग्राम्स भी आते हैं, और साथ में मोनिका सिस्टर, तो ये लोग मिलके, ये लोग भी चारों बहुत सेवाएं करते और मेडिकल विंग के ये लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यज्ञ के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, और जिसके कारण से यज्ञ में एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला। और जब मुझे कहा गया था कि आप सेंटर पर रहना शुरू करो, तो मैंने सबसे पहले जगदीश भाई को, क्योंकि मैं राइटिंग में बहुत मदद किया करती थी उनके, हमारा कॉलेज वहां पे हुआ करता था, तो मैं पढ़ने जाती थी, तो जो भी बीच में टाइम मिलता था ना, तो मैं वहां चली जाती थी सेंटर पे। तो मैंने देखा कि जगदीश भाई बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और वो ये समझते थे कि अगर इस परिवार से ये कन्याएं निकल जाती हैं ज्ञान में, तो एक यज्ञ के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मेरे जो प्रोफेसर हुआ करते थे ना, जब मैं MSc कर रही थी, फिजिक्स में किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसमें हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते थे वो LS कोठारी होते थे, और उनके फादर जो होते थे वो UGC के चेयरमैन DS कोठारी होते थे, शायद किसी ने सुना हो तो, बहुत पहले की बात है, मैं बात कर रही हूँ कोई 78 के आसपास की। तो उस समय DS कोठारी का बहुत नाम था, बहुत ज्यादा नाम था, और वो मुझे बहुत प्यार किया करते थे और अपने घर बुलाया करते थे, कहते कि जो लोग ब्रह्मचारी होते हैं ना वो मुझे बड़े पसंद होते हैं। तो जगदीश भाई जी का मन में ये था कि कोई ये इनको लिख करके दे दें कि ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उस समय इस इंस्टीट्यूशन को लोग रिलीजियस मानते थे, और ये बहुत बड़ा था कि भाई साहब चाहते थे कि कोई ये लिख करके दे दें कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो उस समय फिर काफी कोशिश की गई, तो उन दिनों जो LS कोठारी थे, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का प्रोग्राम चल रहा था, तो वो यहाँ पर आए हुए थे, तो मैंने उनसे बात की कि इस तरह से हमारे जो बड़े भाई साहब हैं जगदीश चंद्र हसीजा जी, वो मिलना चाहते हैं बाऊ जी से। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर जगदीश भाई जी खास पूनम बहन को लेकर के, जयपुर की है ना पूनम बहन, तो उनको लेकर के उनके पास गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो और एक रूपरेखा रची कि भाई ठीक है, बाऊजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो देखने के लिए इंस्टीट्यूशन से भाई साहब आए हैं स्वयं। तब उस समय भाई साहब एक कागज ले गए थे और फटाफट उनसे उस पे साइन करा लिए थे, तब से अपना जो इंस्टीट्यूशन जो है ना, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम से फेमस वो हो गया, रजिस्टर हुआ या क्या, वो तो मुझे नहीं मालूम इतना, लेकिन एक मतलब स्टेप्स आते हैं सेवाओं में, कई बातें होती हैं, कई स्टेप्स होते हैं, लेकिन आप करते चलो ना, तो करते करते कहां लौकिक परिवार बिल्कुल नहीं मानता था उस समय, और कहां पूरा परिवार फिर ज्ञान में चला, और ये जो इतना ज्ञान में चला कि ये जो मीडिया की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, जिसमें डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का शायद कईयों ने नाम सुना हो, बहुत फेमस है जर्नलिस्ट, मीडिया जगत में गुरु माने जाते हैं, हमारे लौकिक में मौसा जी ही हैं, तो वो यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आते हैं। और उन्होंने जब नीचे में कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए ना नीचे में, तो उसमें उन्होंने खास दादियों के लिए बोला था कि ये इंस्टीट्यूशन के अंदर जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, ऐसी शक्ति किसी और में नहीं है। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि अगर जगदीश भाई से मैंने एक बात सीखी, वो सिखाते थे धरत पड़े पर धर्म ना छूटे, जब बाबा के बच्चे निरंतर याद में नहीं रह सकते तो दुनिया वाले आपको कब तक रोक सकते हैं। तो आप अपना निश्चय बुद्धि होकर के चलो कि मुझे करना ही है, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए।